ہم سبھی ایسی آتمائیں ہیں جنہیں بھگوان پیار کرتا ہے. کیا دیکھا اس نے ہم میں؟ کیا دیکھا؟ پیار ایسے ہی تو نہیں کرے گا بھگوان. جو پیار کا ساگر ہے ایسے تو اس کا پیار سب کے لیے ہی ہے, پھر بھی ہم سب سے وہ بہت پیار کرتا ہے. کرتا ہے؟ ماتاؤں کا کیا انوبھو ہے, کرتا ہے یا نہیں؟ یا کہنے کے لیے ہے؟ کیا دیکھا اس نے ہم نے؟ کیا دیکھا بتاؤ؟ سرلتا دیکھی. اور راجو تم بتا دو سب کی اور سے, کیا دیکھا جو پیار کر لیا؟ پیار ہی تو کیا, اپنا بنایا, کسی کو اپنے کاریوں میں لگا دیا. ہم تو بھگوان پر قربان ہوئے ہی, پر کچھ آتماؤں پر وہ بھی قربان ہو گیا اور اس نے اپنی ساری شکتیاں بھی قربان کر دی. تو کچھ دیکھا ہوگا نا, یوگتائیں دیکھی سب کے اندر, دیکھا کہ یہی آتمائیں میرے کام کی ہیں, میرا کام کریں گی. بھگوان کو بھی ضرورت پڑی نا, بھکتی میں بھی یہ مانیتا چلی آئی ہے, کبھی کبھی بھگوان کو بھی بھکتوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جس کو کسی کی ضرورت نہیں اس کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس نے ہم نے بہت کچھ دیکھا, اس لیے بہت پیار کیا, اس نے بہت ساری چیزیں دے دی, ورثہ دے دیا. آج میں ایک مرلی میں پڑھا, بابا کیوں کہتے ہیں باپ کو اور ورثے کو یاد کرو, بھوشیہ ورثہ نہیں, وہ تو ہے ہی. بابا نے سر اس شکتیوں کا ورثہ دے دیا ہے, اسے یاد کرو. تمہارے پاس ساری شکتیاں ہیں. تو آج ہم ایک بہت ہی سرل طریقہ پرچارتھ کی شریشتا کا لے کر چلیں گے, اور ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کو یہیں کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ ہم جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے ہی سندر وچار اپنے انتر من میں بھریں گے. دیکھیے سنسار میں آج کل تناؤ بڑھ رہا ہے, سمسیائیں بڑھ رہی ہیں اور مایا بڑھ رہی ہے. کسی اور بڑھ رہی ہے, اس کو بڑھانے کے لیے کچھ اور شبد دے سکتے ہیں, پرکرتی میں اسنتولن. جب بارش پڑنے کے دن تھے تو سوکھا, اور اب جب کھلنے کے دن ہے تو باڑھ. پڑا ہوگا سبھی نے, سنا ہوگا نا, آندھر کرناٹک میں کتنے گاؤں پانی میں ڈوب گئے. کچھ گاؤں کے لیے کہا تھا, اس کے بہت سارے لوگ لاپتا ہیں. لاپتا مانا رے. پرکرتی میں بھی اسنتولن, مایا کا بھی سمپورن پرکوپ, جیون سمسیاؤں میں بھی دنوں دن بڑھوتری اور تناؤ بھی. بابا نے ہمیں کہہ دیا ہے پانچوں وکار اور پرکرتی کے پانچوں تتو ایک ساتھ وار کریں گے. ہم پہ وار نہ کریں, ہم ان سے ادھک پاورفل بن کر رہے. تو میں آپ کے سامنے یہ تین چار چیزیں رکھ لیتا ہوں, اور سبھی اس ودھی کو اپنے جیون میں اپنائیں گے تو ان چیزوں سے سہج مکتی رہے گی. تناؤ بڑھ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں تناؤ پیدا کر رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سمسیائیں پہلے نہیں تھی, آج ہی زیادہ ہو گئی ہوں. سمسیائیں پہلے بھی تھی, سمسیاؤں کے روپ بدلے ہیں, لیکن آتما خود کمزور ہو گئی ہے, اس لیے اس کی چھوٹی چھوٹی بات سمسیا क्या लगती है। अच्छा, सभी अपने अंदर सूक्ष्म परिवर्तन की बात है। ये किस चीज को हम समस्या समझते हैं और किस चीज को हम समस्या नहीं समझते, समझने पर है ना। एक व्यक्ति गाली देकर चला जाता है, एक व्यक्ति से बहुत बड़ी बात समझता है, मेरा अपमान कर दिया, और दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा के निकल जाता है, कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हुआ भी है। हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है किस बात को हम समस्या समझते हैं, किस बात को हम नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको बहुत बड़ी समस्या लगती है। ऐसे समय पर बीमार हो गए हम, जब हमें ठीक होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है कोई बात नहीं, बीमारी आ गई चली जाएगी, हमें थोड़ा एकांत का समय मिल गया है, चलो अच्छा कुछ बात कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज सभी समझ लें, आज मुझे उस पर ही आपके सामने चर्चा करने का विचार आया अभी। जब हमारा मन शांत होता है, कब होता है मन शांत, कब होता है सबको पता है, जब हम सवेरे उठते हैं, होता है या नहीं। जब हमारा मन शांत होता है तब हमारा अंतर मन पूरी तरह जागृत हो जाता है, जग जाता है। उस टाइम जो विचार हम अपने अंतर मन को दे देंगे तो उन्हें स्वीकार करेगा और वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। हमारे अंतर मन के पास शक्ति है हमारे जीवन निर्माण की, ठीक है। सभी ध्यान देंगे एक बात पर, जो भी कर सकें। दूसरी बात ऐसी है जो ध्यान देकर ही की जा सकेगी, क्या है कि जब हम सवेरे उठते हैं तो जो हमारा पहला संकल्प है, एकदम पहला, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। ध्यान दे, उससे ही हमने क्या सोचा, कहीं हम गलत तो नहीं करते हैं। बहुत लोग गलत सोचते हैं, बहुत संसार में तो पाए अधिकतर लोग उतने ही गलत सोच लेते हैं। पता नहीं क्या होगा, किसी को ये संकल्प है, ये समस्या है, लगता है कि ठीक ही नहीं होगी, उतने ही सोच लेते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उतने ही हम बहुत अच्छे पॉजिटिव विचार अपने मन में लाएंगे, जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने विचारों को, उठते ही वही सोचे जो हम चाहते हैं, वो सबसे महान बन सकते हैं, सबसे सफल, सबों विघ्नों पर विजयी। ध्यान देंगे सभी, समझ रहे हैं, ध्यान देंगे। मान लो किसी का योग नहीं लगता, उसे ही संकल्प करें मैं योगी हूँ। आपका अंतर मन इसको स्वीकार करेगा और अंतर मन की शक्ति योगी बना देगी। किसी का मन बहुत भटकता है, किसी का क्या सभी को भटकता है, आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। उठते ही अब उठते ही नवी याद आए तो जल्दी याद आ जाए, दो चार सेकंड, दस सेकंड के बाद याद आ जाए मैं स्थिर चित्त योगी हूं, मेरी बुद्धि संपूर्ण रूप से शांत हो गई है। बच्चों को सिखा सकती हैं माताएं, उनसे ही सोचें, जिनके पास बुद्धि कम है उनसे ही विचार करें, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूँ। प्रभाव देखो, इन सभी चीजों का प्रभाव। तो मैं उन तीन चार बातों पर आ जाता हूँ और अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है इस समय संसार में, शांति हमारे लिए भी वो बड़ी चीज है कि हम अपनी भावनाओं को शांत कर सकें, तनाव को शांत कर सकें, इधर उधर के विचारों को शांत कर सकें, हर हमारे चमन में जो एक उथल पुथल मची हुई है उसको शांत करना, इसे बदला लेने की इच्छा है। आज जो बाबा ने कहा सभी निर्दोष हैं, याद है ना, सबका अनादि पाठ है, सब निर्दोष हैं, न किसी का कोई दोष नहीं। हमारे मन में दूसरों के प्रति क्रोध भरा रहता है, किसने मेरे से ऐसा किया है, क्रोध। इन सब को हमें शांत करना है, करना है या नहीं, तो सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट में सभी ये काम करेंगे, योग लगाने से पहले। हालांकि ये भी योग ही है, लेकिन मैं इसको इसी तरह कहूंगा, योग लगाने से पहले संकल्प करेंगे मैं आत्मा शांत हूँ, मैं शांत हूँ। चलो जरा लाल लाइट करेंगे एक मिनट के लिए, सभी इस गुड फीलिंग में बैठेंगे, अपने अंतर मन में ये विचार भर दें, मैं आत्मा शांत हूँ। 7 बार करेंगे संकल्प गहराई से, मैं शांत हूँ, मेरा चित्त संपूर्ण रूप से शांत है। मैं शांत हूँ, समस्याएं हैं। आप यदि करेंगे तो आपको महसूस होगा आपका दिन शांति में बीतेगा। अंतर मन के पास ही बहुत बड़ी शक्ति है। फिर सभी बात से जो तनाव करती है या जो मन में क्रोध समाया रहता है वो तेजी से शांत होगा। बहुत आवश्यक है अपने अंदर छुपे हुए जन्म जन्म के क्रोध को शांत करना। समझते हैं ना सभी, जन्म जन्म का क्रोध है, किसने मुझे तंग किया है, उसके लिए क्रोध भरा है, न जाने कितने जन्मों का है, सबका नहीं। वो अंदर भरा हुआ क्रोध आत्मा को चैन से नहीं रहने दे रहा है, उसको शांत करेंगे इस तरह। अब कम से कम 7 दिन ये साधना कर लो, देखो कितना सुंदर परिणाम होता है। दूसरा विचार, विघन। विघन हैं भी और बढ़ भी रहे हैं और बहुत बढ़ेंगे भी, ये हम सब जानते हैं। विनाश काल ही मां विघ्नों से भरपूर काल होगा। अब हम जानते हैं जहां बाढ़ आ गई कितने विघ्न होंगे, हमने तो सुना और छोड़ दिया, हमने तो समाचार सुना वही हजारों लोग मरे, खेती भी नष्ट हो गई, पानी पानी भरा हुआ है, हम तो सुन के भूल गए। लेकिन जहाँ ये हो रहा है वहां की कल्पना करो, उनके लिए धर्मराजपुरी होगी ना। एक व्यक्ति का समाचार मुझे सुनाया कल किसी ने, तो लड़का पेड़ पर चढ़ गया, जब बारिश पड़ने लगी पानी, पेड़ थोड़ा ऊंचा था सूखा सूखा, चढ़ गया ऊपर बैठ गया, पानी बढ़ता गया, देखा होगा टीवी पे आए तुम देखते हो, मंदिर था वही, मंदिर की छोटी तक पानी पहुंच गया, जो कलश है ना वही से बचा। अब वो ऊपर बैठा है और रो रहा है अकेला, तो नीचे देखे तो क्या दिखेगा, फल है। अब रो रहा है वो परेशान कि अगर ये पेड़ गिर गया तो मैं भी गया। अब देखो उसका भाग्य था, हेलीकॉप्टर घूम रही थी जिसने देख लिया उसको, क्योंकि पेड़ सूखा था, पत्तों वाला नहीं था। बस हेलीकॉप्टर उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा, उसने जोर जोर से हाथ हिलाया और उन्होंने रस्सी गिराई और किस तरह इसने पकड़ी और उन्होंने इसको खींचा। अब देखो आप, उसका अगर एक घंटा दो घंटा वहां बीता हो तो कैसा समय रहा होगा उसके लिए, महा घबराहट का, पता नहीं कब मौत सामने। और लोग बने गए थी, अमेरिका में आया, इंडोनेशिया में आया, जिनकी बहन बता रही थी भय बढ़ता जा रहा है विदेशों में, बहुत भय बढ़ रहा है, अभी कुछ भी होता है तो विघ्न है और बढ़ रहे हैं, हम विघ्नों पर विजयी रहें, विघ्न हमें छू न सकें। अब दो विचार इसी तरह भरने लगे अपने अंदर, सवेरे भरेंगे बहुत अच्छा पहले 10 मिनट में। एक संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ। हो सके तो अपनी डायरी में पहले पेज पर लिख दो, इसे याद आता रहे। विघ्न शक्तिशाली नहीं, कौन है शक्तिशाली? मैं है मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इन विघ्न परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा की ये बात याद रखनी है, जिन्होंने लंबा काल अपना जीवन निर्विघ्न बिताया है वही विघ्न विनाशक बनेंगे लंबा काल। क्योंकि अगर जीवन में विघ्न आते रहते हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती है ना, सहज की बात है। तो हम दूसरों के विघ्न कैसे नष्ट करेंगे, जबकि बाबा ने तो हमें लक्ष्य किया, तुम्हें तो विश्व के लिए विघ्न विनाशक बनना है आगे चलकर। तो अपने विघ्नों में यदि हम उलझे रह गए तो विश्व के विघ्नों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आत्माएं लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते हैं वो विघ्न विनाशक बन जाती हैं। तो रोज सवेरे हम अपने को इसी तरह ये संकल्प देंगे, मैं निर्विघ्न हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है। विघ्न कितने भी हों आपके पास, आप ये संकल्प देने लगो अपने को। चलो एक मिनट सीखते हम ये अभ्यास करते हैं और अपने अंतर मन में सभी बहुत गहराई से ये विचार संभालें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दी हैं, मैं विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा जीवन निर्विघ्न है। मैं विघ्नों से मुक्त हूँ। मैं विघ्न जीत हूँ। तो सभी को ध्यान रखना है, जीवन विघ्न में न हो जाए, विघ्न से घिरा हुआ न हो जाए, क्योंकि मनोस्थिति ऐसी चीज है कि अगर थोड़ा भी लंबा समय, थोड़ा लंबा समय कोई विघ्नों में जीवन बिताने लगे, बीत जाए किसी का, तो उसकी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, स्थिरता खत्म हो जाती है, आंतरिक शांति लोप हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी है, ज्ञान और योग के बल से विघ्नों से पार रहें। बहुत क्या होता है, तिघन आ गए तो क्लास फर्स्ट या थ्री मुरली की बहुत बड़ी गलती है। ये होना ये चाहिए, अगर विघन ज्यादा आ गए तो ज्यादा क्लास करें, अरे ताकत ही नहीं मिल रही तो विघन तो पावरफुल हो जाएंगे। विघन आ गए तो रात को नींद नहीं आ रही तो सवेरे भी नहीं उठ रहे हैं, तो टोटल दिनचर्या का जो साइकिल है ये बिगड़ जाता है। हमें बिगड़ने नहीं देना है, कम से कम बाबा के महावाक्यों का बल हमारे पास अवश्य रहे। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे विवेक को सुला देती हैं, धक देती हैं ना, हमें याद ही नहीं रहती अच्छी अच्छी बातें, मुरली में आते ही हमारा विवेक खुल जाएगा, जागृत हो जाएगा और अच्छी अच्छी बातें हमें स्मृति में रहेंगी। तो स्मृति स्वरूप होना ही जागृति है ना, आंतरिक जागृति है, हमारे साथ कौन है, किसने हमारे सिर पर छत्र छाया लगा दी है, कौन हमें साथ दे रहा है, ये याद आते ही आत्म जागृति होगी और विभिन्न समस्याएं हमें छोटी लगने लगेंगे। तीसरी बात, माया को हमें जीतना है। माया का स्वरूप भी दिनों दिन विकराल होता जाता है और बाबा ने बता ही दिया है, विदाई लेने से पहले फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे पांचों विकार। आजकल दुनिया में एक विकार के लिए बहुत चर्चा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, वो कौन सा होगा, वो मालूम है आजकल, लोग आप देखते हैं पैसे के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार, चाहे उसको दूध में चूना क्यों न मिलाना हो, खाने वाले सब मर जाए, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसका तो पैसा चाहिए। बहुत सारे समाचार आ गए ना आजकल, सारे संसार में लोग वृत्ति तेजी से बढ़ रही, पैसा चाहिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए तैयार। ये मनुष्य की बहुत ज्यादा गिरावट है। काम क्रोध अहंकार ये तो महाशत्रु हैं, पर लोग भी महाशत्रु बनकर सामने आ रहा है। तो भिन्न भिन्न तरह की माया मनुष्य को कष्ट पहुंचा रही है, कष्ट पहुंचाएगी। अब ऐसा पैसा जो इस तरह के गलत कार्यों से इकट्ठा किया जाता है तो मनुष्य के लिए क्या नहीं होता, सुखदायी नहीं होता, वो बीमारियों में जाएगा, पुलिस के पास चला जाएगा, चोर ले जाएंगे, जब उस पैसे का अन्न खाते दर्द दर्द हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है। तो हमें माया को जीतना है। माया को जीतना सहज है कठिन, कहने के लिए सहज समझो है तो निश्चित रूप से कठिन, अगर सहज होता तो सभी माया जीत बन जाते, लेकिन आज हम उसे इसे सहज बनाएंगे। एक ही संकल्प बहुत सुंदर है, मैं माया जीत हूं, ये जानते हुए भी कि मैं नहीं हूं, ऐसे यहां द्वंद न हो हमारे मन में कि मैं माया जीत तो हूं नहीं, झूठ हूं, संकल्प कर रहा हूं मैं माया जीत हूं, ये नहीं। माया जीत होने का हमें परमात्म वरदान है, माया को हमें ही जीतना है, हम विजय रतन हैं। तो अपने अंतर मन में इसी तरह भरेंगे, मैं माया जीत हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, तो आप पाएंगे माया को जीतने की शक्ति आत्मा में आने लगी। अगर हमने पहले ये संकल्प अपने अंतर मन में भर दिया है, बहुतों ने भरा हुआ, पहले से ही भरा दिया था साधु संतों ने, शास्त्रों ने, क्या माया को जीता नहीं जा सकता, बड़ी दुर्लभ है। कबीरदास ने भी कह दिया, अच्छा अच्छा, माया महा ठगनी हम जानी, बड़ी ठगनी है ये तो, सब ने मान लिया, ऋषि मुनियों ने भी, वही बड़ा कठिन काम है माया को जीतना। और आजकल तो सन्यासी भी खुलेआम बोलने लगे, असंभव है, अब कठिन से भी दूसरा शब्द आ गया, इम्पॉसिबल है माया को जीतना। तो कहीं कहीं आत्माओं के अंतर मन में ये विचार भरा हुआ है, साढ़े दस साल हो गए क्रोध को छूटा नहीं, इस क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल है। काम विकार बहुत तो जीत लिया, तो संपूर्ण इसको जीतना वही कलयुग में बड़ा कठिन है। मोह माया तो लगी रहेगी, परिवार में रहेंगे बच्चे पोतों से मोह तो रहेगा ही। तो अंतर मन में ही ये बात भर दी है कि ये रहेंगे, हमको ये सत्य है या गलत, ये गलत भर दिया है, हम इसे चेंज करें। अब हमारे पास दोनों चीज हैं, संपूर्ण शक्तियां भी और संपूर्ण ज्ञान भी। और तीसरी भी चीज है कि स्वयं जो हमारा सुप्रीम कमांडर है, कौन, सर्वशक्तिवान, उसने हमें पहले ही बता दिया है माया पर तुम्हारी जीत होगी ही, तुमने ही कल इस माया को जीता है। तो अपने अंतर मन में अब ये संकल्प भरे, मैं माया जीत हूँ, कल्प मैंने इस माया को जीता है। अब देखेंगे माया को जीतना आपके लिए सहज हो जाएगा। एक चीज और जोड़ दो, इसमें बहुत सब भाई बहनों का ये क्वेश्चन रहता है, हमारे पास निर्णय शक्ति नहीं है, उसको कैसे बढ़ाएं? हमारे पास चयन शक्ति की कमी है, उसको कैसे बढ़ाएं? बाबा ने निर्णय शक्ति के लिए एक बहुत अच्छी बात पहले ही कही है, बुद्धि जिसकी जितनी स्थिर होगी निर्णय शक्ति उतनी बढ़ेगी। परंतु हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करेंगे, अंतर मन की शक्ति का प्रयोग, ध्यान से सुन लेंगे। बाबा ने अपना बच्चा बनाते ही हमें आठों शक्तियां वरदान में दे दी हैं। पहले तो इस बात को स्वीकार करेंगे हम, स्वीकार है ना? फिर सवेरे के समय, वही सवेरे का समय जब हमारा मन शांत हो, हम याद करेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा ने अपनी आठों शक्तियां मुझे दे दी हैं। इसको बहुत अच्छी फीलिंग मिलाएंगे, मेरे पास बाबा की सारी शक्तियां हैं। अब इसके बाद बहुत गहराई से अपने अंतर्मन को विचार देंगे, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। सात बार करना चाहिए, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। सहन शक्ति आपको चाहिए, मेरे पास सहन शक्ति है, मैं सहन शक्ति की देवी हूँ, बाबा ने दिया था ना एक साल पहले, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। विचार भरो, ये देखो बाबा हमें ये ट्रेनिंग देता है। तो ये विचार भरते भरते ये शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। आठों शक्तियाँ हमारे पास हैं, निर्णय शक्ति हमारे पास है, लेकिन वो दब गई है, काम नहीं कर रही है किसी भी कारण से, चाहे व्यर्थ संकल्प हो या कई जन्मों का इफेक्ट हो कोई भी हमारी निर्णय शक्ति पर। अब जैसे ही हम संकल्प करेंगे मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, तो जो दबी हुई है वो एक्टिव हो जाएगी, बाहर आ जाएगी और हमारी निर्णय शक्ति कम करने लगेगी, हमें महसूस होने लगेगा हमारे निर्णय परफेक्ट होने लगे हैं। किसी भी शक्ति को जिसको हम अपने जीवन में आह्वान करना चाहते हैं, उसका ये तरीका हम अपनाएंगे। पसंद है? समझ गए ना माता जी सभी? कोई ये कहेंगे नहीं मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, ये बहुत समस्याएं आती हैं, हम तो हार मान गए, हम तो थक गए इन समस्याओं से। माताएं बहुत बोलते हैं थका दिया इन समस्याओं ने, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कहीं इनका अंत ही नहीं है। अपने अंदर इमर्ज करो, मेरे पास सामना करने की संपूर्ण शक्ति है, इसको याद करो अपने सवेरे सवेरे, सात बार रोज याद दिलाओ, दिन में भी याद दिला सकते हैं, शाम को इस टाइम भी, योग का हमारा समय होता है, इस टाइम भी हम याद दिला सकते हैं अपने को, तो सामना करने की शक्ति इमर्ज हो जाएगी और उस शक्ति के आते ही समस्याएं स्वतः ही पीछे हटने लगेंगी। समस्याएं कम भी हो जाएंगी और हमारे पास भी शक्तियां बढ़ जाएंगी और इससे हम महसूस करेंगे कि बहुत कुछ ठीक हो गया है। तो सभी बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे, हमें अपने संकल्पों को ठीक करना होता है। जहां हमारे पास कमजोर संकल्प बार बार रहते हैं तो हमारा अंतर्मन उन्हें स्वीकार कर लेता है और फिर हम वैसे ही रह जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, बहुत लोग जो गरीब हैं, अब उनके अंतर्मन में समा गया है हम तो गरीब हैं। वो उठते बैठते लोगों से मिलते हुए ये कहते रहते हैं कि हम तो गरीब हैं। कहते नहीं सुनते होंगे ना आप भी। तो क्या हो गया कि उनका अंतर्मन इसको स्वीकार कर लेता है कि हम तो गरीब हैं, बस वो गरीब ही रहेंगे। बहुत बड़ी अंतर्मन की शक्ति इस तरह निगेटिव रूप में भी काम करती है। आपने सोच लिया कोई बीमारी हो गई तो अब कोई बीमारी जाएगी नहीं, कह देते हैं ना कोई हाई ब्लड प्रेशर हो गया अब तो जीवन भर चलेगा। डॉक्टर भी कह देते हैं अब तो गोली खाते रहो सुखी रहो, अब तो ये जाएगी नहीं। चेंज करें अपने विचारों को, ये जाएगी। रोज अगर हम अंतर मन को ये विचार देने लगे मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, देखो ये विचार देकर आप देखें मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं निरोग हूँ, तो बहुत बड़ा काम करेगा ये संकल्प। ऐसे ही प्रकृति की जो बात है, प्रकृति जो बहुत भयानक प्रकोप पैदा कर रही है और आगे चलकर करेगी, जैसे केवल बरसात का हुआ लेकिन जब भूकंप शुरू हो जाएंगे त्राही त्राही मच जाएगी संसार में। भूकंप का एक स्वरूप बड़ा कल्याणकारी भी होगा। कौन सा भूकंप से क्या कल्याण होगा? एक सेकंड में सब नीचे चल जाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं नहीं, और कुछ सोचो। देखिए क्योंकि शिव बाबा तो इस सृष्टि का रचने वाला है ना, कल्याणकारी है। अब ये जो धरती है ये अन्न दे नहीं रही है, जानते हैं ना सभी, अन्न को इससे खींचा जा रहा है। इसमें उर्वरक शक्ति जिसको कहते हैं, अन्न पैदा करने की शक्ति, वो तो लगभग समाप्त हो गई है। बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी ऐसी वैसी चीजें डाली जा रही हैं। अभी मुझे किसी ने फोन किया एक परिवार कि हम सब के मुंह आ गए हैं, छाले हो जाते हैं मुंह में लाल, क्यों क्या हो गया भाई? का भिंडी खाई थी, अब वो भिंडी थी बनी हुई थी केमिकल से, खाद डाल के खाते सब के अंदर गर्मी पैदा कर दी। तो अन्न पैदा करने की ताकत पृथ्वी में नहीं रही है। और जो खनिज है, चाहे वो कोयला हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, सोना, सब खाली हो गए ना, ऊपर से निकाल लिए हम सब ने। पानी भी तो खत्म हो गया। तो लेकिन संसार को चलाने के लिए ये सब चाहिए तो जरूर। तो भूकंप से ये ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर, एक बात होगी। दूसरा, धरती के अंदर माल तो बहुत है, सतयुग में तेल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये तेल की तो बात छोड़ो, लेकिन हीरे सोना मोती ये सब जो अनमोल चीजें हैं ना, ये धरती में बहुत है, इनका तो विनाश नहीं होता, लेकिन जाते नहीं है, वो सब एक झटके में ऊपर आ जाएंगे। मैंने सुनाया था आपको, छत्तीसगढ़ में मैं गया था तो मुझे बताया वहाँ के भाइयों ने कि यहाँ गवर्नमेंट को भी मालूम हुआ है कि एक जगह नीचे 9 किलोमीटर नीचे हीरो की लंबी चौड़ी खान है, कई किलोमीटर में। अब 9 किलोमीटर से निकालना बड़ा कठिन काम है, तो फॉरेन एजेंसी से संपर्क किया है कि वो निकाल सकते हैं या नहीं। तो मैं तो ऐसे ही हंसी में कहा कि भाई किसी का संबंध हो सरकारी लोगों से तो उन्हें बताओ कि इसकी जरूरत नहीं है, एक झटका लगेगा, नीचे का सारा माल ऊपर, लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा, ऊपर का सारा माल नीचे, बदला तो होगा ना। अगर हीर से ऊपर आएंगे तो ऊपर का कुछ नीचे जाएगा, वो देखना होगा क्या जाएगा। तो प्रकृति इस तरह से जो प्रकोप करेगी ये कल्याणकारी भी होगी, जिनकी जो आज लोग चिंतित हैं, वो जो उनमें होल हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, माताएं तो नहीं जानती होंगी, जो बर्फ के पहाड़ थे ना बड़े बड़े वो पिघल गए हैं, वाटर लेवल सागर में जो पानी है वो ऊंचा उठ रहा है, लोग बता रहे जल्दी जल्दी उठ रहा है, लेकिन इन सबसे बहुत बड़ा कल्याण भी होगा, दिखाई देगा विनाश, फाइनली होगा कल्याण, धरती हिल डुल के फिर जो सीधी हो जाएगी तो बसंत बाहर आ जाएगी धरती पर। तो हम सब प्रकृति की यातनाओं से मुक्त रहें, भाकस होगा प्यास लगी हो और पानी न हो, इस छोटी सी बात देख लो, कहने सुनने में तो कुछ नहीं लगती प्यास, उसकी कोई कीमत ही नहीं लगती आज, अब तो घर पानी महंगा हो गया, अन्यथा कहाँ की कीमत, किसी को प्यास लग रही हो घंटा बीते दो घंटे बीते क्या हाल होगा। प्रकृति हमें यातनाएं ना दे, हम अभी से अपने अंतर्मन में ये विचार ये संकल्प भर दे, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, प्रकृति जीत हूँ, मैं अपना क्योंकि शरीर की मालिक हूँ, ये विचार ये संकल्प बार बार देना होगा, मैं आत्मा की शरीर प्रकृति की मालिक हूँ, मैं संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। जैसे जैसे हमारी ये फीलिंग बढ़ेगी तो प्रकृति हमारे लिए सुखदायी हो जाएगी, सहयोगी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ हुआ है उसको हमने किया है ना, मनुष्य ने बिगाड़ा है ना प्रकृति को, और अब हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को फिर से तपोवन बनाएंगे, बहुत बड़ी चीज है, हमारे योग के वाइब्रेशंस इस प्रकृति को जो खाली हो गई है फिर से फुल करेंगे, सिंपल भाषा, प्रकृति जो खाली हो गई है ना पालना करते करते, हम उसको फिर से सशक्त करेंगे, तपोवन बनाएंगे, उसमें शक्तियां आ जाएंगी, भरपूर हो जाएगी, जिससे हमारे पवित्रता के वाइब्रेशंस हमारे योग के वाइब्रेशंस से, तो हम बहुत अच्छी तरह अपने अंतर मन में भरें, मैं प्रकृति का मालिक हूँ। सचमुच हम ही मालिक हैं, ये केवल कहने की बात नहीं, हम ही इसको तैयार कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए ये हमारे अधीन रहेगी, दो युग तक हमारी बिल्कुल सुंदर ढंग से पालना करेगी, और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमें अभी दिखाई देगा कि प्रकृति हमें कष्ट नहीं देगी, जहाँ एक और वो विनाशकारी सिद्ध होगी सारे संसार के लिए, हमारे लिए बहुत सुखदायी सिद्ध होगी। पसंद है माताओं को, कौन हूँ मैं, प्रकृति की मालिक, और मालिकों का काम है प्रकृति की पालना करना, ये बात संसार के लोग नहीं जान सकते, प्रकृति हमारी पालना कर रही है, परंतु अब हम उसकी पालना करेंगे पवित्र वाइब्रेशंस देकर, योग के वाइब्रेशंस देकर, रोज सवेरे ये भी अपने अंतर मन में भरेंगे, मैं प्रकृति की मालिक हूँ। ये है हमारे ये जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, इनका महत्व, इनको अपने अंतर मन में सब भरेंगे तो आप देखेंगे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रोज चारों पांचों ले सकते हैं, सात सात बार एक एक को भर दे अपने अंदर में, और सात दिन तक तो अवश्य, 21 दिन तक भरेंगे बहुत अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि 21 दिन तक जब किसी भी चीज का हम अभ्यास करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारी नेचर बन जाती है, बहुत डीपली जिसका तनाव रहता हो मैं शांत हूँ, बैठकर बल्कि ये योग ही हो जाएगा हमारा, भले इसको आंख बंद के करेंगे आप। पसंद है? अब लास्ट बात, केवल आज बाबा का जो स्लोगन था याद है, ज्ञान प्राप्त करने का साधन संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। पहली चीज कौन सी है, करना या रहना? माताएं बताएंगी, रहना या करना? रहना। क्योंकि जो स्वयं संतुष्ट होंगे वही दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। कहीं कहीं दूसरों को संतुष्ट करने के लिए हमें अपना त्याग भी करना पड़ता है, और त्याग भी वही कर सके जो संतुष्ट हैं। मैंने पहले ही खुद स्वयं को चाहिए, वो त्याग नहीं कर पाते, असंतुष्ट रहते हैं। तो हमें स्वयं को संतुष्ट करना है, करना है। देखिए, एक होता है संतोषी स्वभाव, कुछ लोग जीवन में संतोषी होते हैं, संतोष रखते हैं, जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला ठीक। लेकिन हम सबके पास बहुत बड़ी प्राप्तियां भी सामने हैं, कंपटीशन का युग भी है, हम बहुत कुछ प्राप्त करना भी चाहते हैं, कुछ हमें प्राप्त होता है, कुछ नहीं होता, कभी प्राप्त करने में विघ्न आते हैं। तो हम कुछ चीजों में अपने को संतुष्ट रखें। सबसे पहली चीज, अपने पार्ट में संतुष्ट, अपने जीवन से संतुष्ट। ये नहीं हम तो बहुत गरीब हैं, साहूकार लोग बड़े सुखी हैं, असंतुष्ट रहते हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, नहीं। जहाँ हम हैं, जिस स्थिति जिस पोजीशन में हम हैं, उसको स्वीकार करके संतुष्ट हो जाएं। कई के लोग इसी बात से असंतुष्ट होते हैं, हम और पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब पढ़ने का समय बीत गया हो। तो हमें संतुष्ट होना है। ऐसा कम है, विशेष परिस्थिति है, कोई बीमारी लग गई है शरीर को, साथी कैसे मिले हैं, उन सबके साथ संतुष्ट। सभी विचार करेंगे इसमें, साथी कैसे मिले हैं, अलौकिक सेवाओं में भी और लौकिक में भी, जिनके साथ आपको जीवन बिताना पड़ रहा है, वो जरूरी तो नहीं वैसे ही हूँ जैसे आप चाहते हैं, उनके साथ संतुष्ट। स्वयं संतुष्ट होंगे दूसरों को भी बदल सकेंगे, तो संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरों पर प्रभाव नहीं रहेगा। संतुष्ट रहेंगे ये बदले नहीं बदलेंगे, लेकिन यदि हम संतुष्ट होंगे तो हम दूसरों को सहज बदल सकेंगे। इसलिए जहाँ जैसे जिस परिस्थिति में भी हम हैं, स्वयं को समझा दें यही सत्य है, स्वीकार करके उसमें संतुष्ट हो जाएं। सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे, और जितना हो अपने बोल से, सहयोग से, सम्मान देकर, मीठे बोल बोल कर, दूसरों की मदद करके हम दूसरों को संतुष्ट करें, तो इससे दुआएं बहुत मिलेंगी और ये एक बहुत बड़ी मान्यता हो जाएगी हमारे जीवन के लिए। तो सभी आज सोने समय और कल उठकर अपने अंतर मन को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। किसी भी टाइम दी जा सकती है, पर विशेष महत्व इस चीज का है कि उस टाइम हमारा मन शांत हो। आपका मन 12 बजे शांत है, 12 बजे ये विचार आप अपने अंदर भर दें। इवनिंग का टाइम शाम का योग का बहुत अच्छा है, मन शांत हो तब ये विचार अपने अंदर भरेंगे, तो जीवन की यात्रा बिल्कुल सरल। ओम शांति। अब सभी इसी संकल्प से योग करेंगे, मैं हूँ मास्टर सर्व शक्तिवान, ऊपर से बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही है।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये साथ दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।